19 मई रविवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज 59 सीटों पर होगा मतदान। क्या वजह है कि एग्जिट पोल कभी सटीक साबित होते हैं और कभी उनके दावों की हवा निकल जाती है?
जो आंकड़े आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उसके पीछे एक बड़ी टीम होती है जो काम करती है। हो सकता है कि वो जो आकलन अनुमान होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस वजह से भी होता है कि कुछ एनालिसिस में कमी रह गई हो।
ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में कंजर्वेटिव गठबंधन को मिली चमत्कारिक जीत।
I have always believed in miracles.
सुनिए पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। लोकसभा चुनावों के सातवें और आखिरी चरण के लिए अब से कुछ ही देर बाद वोट डाले जाएंगे। 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पिछले 6 चरणों में 543 लोकसभा सीटों में से 484 सीटों पर मतदान हो चुका है। अंतिम चरण में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मतदान होगा। इस चरण में तकरीबन 10 करोड़ मतदाता 900 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से, मनोज सिन्हा गाजीपुर से, फिल्म अभिनेता सनी देओल गुरदासपुर से, रवि किशन गोरखपुर से और शिव सोरेन दुमका से चुनाव मैदान में हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की अगुवाई वाले कंजर्वेटिव गठबंधन ने सत्ता में वापसी कर ली है। इन नतीजों को चमत्कारिक बताया जा रहा है क्योंकि लगभग सभी चुनाव पूर्व अनुमानों में विपक्षी लेबर पार्टी की जीत पक्की बताई जा रही थी। मॉरिसन ने अपने गठबंधन को फिर से जिताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया और कहा कि उन्हें हमेशा से ही चमत्कारों में विश्वास रहा है। लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन ने हार स्वीकार कर ली है और नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने मध्यावधि चुनाव कराने की मांग की है। एक स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद वाइस चांसलर हेंज क्रिश्चियन स्ट्रेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑस्ट्रिया में कुर्ज की पीपुल्स पार्टी और स्ट्रेच की फ्रीडम पार्टी का गठबंधन सत्ता में है। स्ट्रेच को धुर दक्षिणपंथी नेता माना जाता है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के बाद स्ट्रेच की भारी आलोचना हो रही है। उनकी ही पार्टी के एक नेता फ्रेंज ओबरमायर ने कहा, बिल्कुल, जो उन्होंने किया वो तो सोच से भी परे है। पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ और ये उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद निराशाजनक है जो हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। ये थे फ्रीडम पार्टी के नेता ओबरमायर के शब्द। पहली बार अमेरिका में एक रिपब्लिकन सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार ऐसा है कि उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। जस्टिन अमाश ने कहा कि मुलर रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ट्रंप के चुनाव अभियान में रूस की दखलंदाजी के आरोपों पर मुलर कमेटी का गठन किया गया था। रिपब्लिकन सांसद जस्टिन ने अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र पर भी रिपोर्ट के नतीजों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस ने इस पर अभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज ने घोषणा की है कि वो इस साल होने वाले चुनावों में उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। क्रिस्टीना को राष्ट्रपति पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इसके लिए उनके पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ अल्बर्टो फर्नांडीज को चुना गया है। क्रिस्टीना की ही पार्टी के एक पदाधिकारी मॉरिसियो मैक्री ने क्रिस्टीना की दावेदारी का विरोध किया है। उन्होंने कहा, अतीत हमें सिर्फ बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जिसे हम बदल नहीं सकते वो हमारा अतीत ही है। वर्तमान और भविष्य बदलते हैं और ये हर दिन बदलते हैं। ये थे मॉरिसियो मैक्री के शब्द। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका से कहा है कि वह दोनों देशों के व्यापारिक विवाद को ज्यादा तूल न दे। वांग यी ने अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को फोन पर कहा कि बातचीत के दौरान अमरीका को अड़ियल रवैया नहीं दिखाना चाहिए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। भारत में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, झारखंड की 3, उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की भी 13, मध्य प्रदेश की 8, हिमाचल प्रदेश की 4 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर लोकसभा की 59 सीटों पर आज मतदान होगा और इन सीटों पर जिन प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद होगा उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके कांग्रेसी बने शत्रुघ्न सिन्हा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अभिनेता सनी देओल और रवि किशन जैसे कई नाम शामिल हैं। बारी बारी से करेंगे सबकी चर्चा। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव के हर चरण में हिंसा हुई है। राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 9 सीटों पर मतदान बचा था जो आज होने जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता। वरिष्ठ पत्रकार पीएम तिवारी टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पीएम तिवारी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोलकाता के रोड शो में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ दिन पहले जबरदस्त झड़प और हिंसा के बाद मतदान के लिए आज कितना सहज वातावरण नजर आ रहा है आपको इस समय?
मतदान में वातावरण एकदम असहज है। 3-4 दिनों पहले हुई रोड शो में हिंसा के बाद से दोनों दलों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं और सुबह अभी कुछ देर बाद मतदान शुरू होना है, लेकिन हवा में चिड़ियों की चहचहाट के साथ बारूद की गंध भी है। कल रात से ही हिंसा की खबरें हैं कुछ इलाकों में। उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं। वहाँ तृणमूल के बागी अर्जुन सिंह बीजेपी उम्मीदवार थे बैरकपुर लोकसभा सीट पे, तो उनके और टीएमसी के समर्थकों के बीच कल रात काफी गोलीबारी हुई, बम फेंके गए और कारें जला दी गई। उसके बाद केंद्रीय बल और राज्य पुलिस के भारी जवान वहां तादाद है और दोनों दलों ने एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, चुनाव आयोग से शिकायत की है, तो माहौल काफी असहज नजर आ रहा है।
पीएम तिवारी, ये भी बताइए कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने इस चरण में, आखिरी चरण में किन चेहरों पर दाव लगाया है?
इस चरण में खासकर टीएमसी के लिए ये काफी साख और नाक का सवाल बन गई है 9 सीटें, क्योंकि पिछली बार ये सब सीटें उसने ही जीती थी। इस बार लोकसभा में संसदीय पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय हैं, फिर रेल मंत्री पूर्व मंत्री रहे सौगत राय हैं दमदम सीट से। इसके अलावा डायमंड हार्बर सीट पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, उनके कारण ये सीट काफी अहम हो गई है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां रैलियां की है। इनके अलावा ममता ने जिन दो शीर्ष अभिनेत्रियों को मैदान में उतारा था, जादवपुर सीट से और बशीरहाट से मिमी चक्रवर्ती, ये हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव राहुल को उतारा है और कोलकाता दक्षिण में नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस मैदान में है।
कोलकाता से ये थे वरिष्ठ पत्रकार पीएम तिवारी। कोलकाता से चलिए पटना। बिहार में लोकसभा की 8 सीटें हैं जहां आज मतदान होगा। पटना से हमारी सहयोगी सीटू तिवारी इस समय कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। सीटू, बिहार में इस चरण में शायद पटना साहिब सीट ही वो सीट है जिस पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की नजर होगी।
बिल्कुल, इस चरण में देखिए 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। पाटलिपुत्र, पटना साहिब, काराकाट, नालंदा, सासाराम, आरा, जहानाबाद और बक्सर। पटना साहिब जो सीट है उस पर जो सीधा मुकाबला है वो रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा का है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी से हैं और शत्रुघ्न सिन्हा दो टर्म यहां से पटना साहिब से सांसद रहे हैं 2009-2014 में और तीसरी बार वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो कमल के फूल के साथ नहीं बल्कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और कहा यह जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा का जो अपना जो उनका ताकत है वो इस वक्त उसकी इस बार उसकी परीक्षा है। पटना साहिब के अलावा पाटलिपुत्र सीट है जिसपे रामकृपाल यादव और मीसा भारती का सीधा मुकाबला है। मीसा भारती जो है इस बार रामकृपाल यादव को टफ फाइट दे रही हैं। इसकी वजह ये है कि पिछली बार जो दोनों के बीच जीत का अंतर था वो 40,000 के आसपास का था और अब की बार भाकपा माले ने मीसा भारती को सपोर्ट किया है और भाकपा माले ने पिछली बार इस सीट से तकरीबन 50,000 वोट जो है वहां बटोरे थे। इसके अलावा आरा है जहाँ पर सीधे सीधे मुकाबला आर के सिंह और राजू यादव का है। ये एक सीट है जिस पर आरजेडी ने भाकपा माले को सपोर्ट किया या आरजेडी ने अपनी सीट जो है वो भाकपा माले को दी थी। नालंदा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सीट है जिस पर अब की बार इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि नालंदा जो है वो नीतीश कुमार का गढ़ है, कौशलेंद्र कुमार यहाँ से कैंडिडेट हैं और तीसरी बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुर्मी बहुल क्षेत्र है और बहुत अगर नालंदा ये सीट जीतती है तो एक तरीके से नीतीश कुमार का जो पिछले एक दो साल में जो उनका अपना राजनीतिक कद थोड़ा खत्म हुआ है या कम हुआ है उसको फिर से स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बक्सर सीट है जहाँ पे अश्विनी चौबे और जगदानंद सिंह के बीच मुकाबला है, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह के बीच में मुकाबला है। इस पूरे जो आठ चुनाव हो रहे हैं आठ सीट पर, इसमें चार केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 157 प्रत्याशी हैं, 1,51,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं और कुल जो है वो 15,811 मतदान केंद्र बनाए गए। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं जोड़ दूं कि कुछ सीटों पर 7 से 4 बजे के बीच ही मतदान होगा, जिसमें पाटलिपुत्र कुछ जगहों पर, माफ कीजिएगा, 7 से 4 बजे के बीच मतदान होगा जिसमें पाटलिपुत्र के मसौढ़ी और पालीगंज है, सासाराम में भभुआ, चिनारी और चैनपुर है और काराकाट में डिहरी, काराकाट, गोह और नवीनगर है। ये अति संवेदनशील जगह मानी गई हैं और यहाँ पे 7 से 4 के बीच में मतदान होगा, बाकी जगहों पर 7 से 6 बजे के बीच में सामान्य तौर पर मतदान होगा।
बिहार की राजधानी पटना से जानकारी दे रही थी सीटू तिवारी। लगे हाथ जिक्र झारखंड का, जहां राजमहल, दुमका और गोड्डा, इन 3 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीती थीं और 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली थीं। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहाँ आज 13 सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, पूर्वांचल में किन सीटों पर और किन उम्मीदवारों पर रहेगी आपकी नजर?
जी संदीप, पूर्वांचल की 13 सीटों पर आज आखिरी चरण में मतदान हो रहा है और इनमें वाराणसी भी शामिल है जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका भी त्रिकोणीय मुकाबला है एक समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव और कांग्रेस के अजय राय से। हालांकि माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जीत में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और कहा यह जा रहा है, जो चर्चा है कि उनकी लड़ाई अंतर बढ़ाने के लिए हो रही है न कि हार जीत के लिए। बहरहाल अब ये तो मतदान के बाद पता चलेगा कि किस लिए हो रही है। और सीटों की अगर बात करें तो इनमें गोरखपुर है जहां से योगी आदित्यनाथ हद तक चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार रवि किशन जो फिल्म अभिनेता है भोजपुरी फिल्मों के, उनको खड़ा किया गया है, वहां से गुणात्मक लड़ाई है। बाकी और सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंदौली से लड़ रहे हैं, उनकी भी लड़ाई जो है वो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार से है। तो ज्यादातर सीटों पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों के बीच में त्रिकोणात्मक लड़ाई है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं मिर्जापुर से। यानी 13 सीटें जो जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है 2014 के चुनाव में, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी अपना दल के पास थी, लेकिन इस बार सारी सीटों पर मुकाबला है। बनारस को छोड़ करके और सभी जगह त्रिकोणात्मक संघर्ष है और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिर्जापुर सोनभद्र का इलाका है वहाँ पे वो थोड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी इलाका है, उन जगहों पर जो सामान्य रूप से सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक मतदान का समय है, वहां पर मतदान का समय केवल 7 बजे से शाम को 4 बजे तक ही है। तो ये वहाँ का समीकरण है। और एक बात और आपको बता दें संदीप, की मुख्यतः जो ये मुकाबले हैं, जो टिकट बंटवारे हुए हैं, राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है, इनमें सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता होती है वो जातीय समीकरणों को देख करके टिकट बंटवारे हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि जो चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, इसमें भी यही मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। लोग मतदान के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दे रहे हैं या जो देख रहे हैं कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा।
लगता है संपर्क टूट गया है। समीर आत्मज मिश्र लखनऊ से दे रहे थे जानकारी। और अब चलिए पंजाब। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, सभी 13 सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान होगा। इस समय गुरदासपुर में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा। अरविंद, बताइए किस सीट पर कितना रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा है आपको?
जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक ही चरण में जैसे आपने कहा कि चुनाव हो रहा है 13 की 13 सीटों पर, पंजाब की 2,70,00,000 वोटर होंगे जिसमें से 250 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं पुरुष उम्मीदवार हैं और 24 के करीब फीमेल उम्मीदवार जो होंगे यहाँ पर हैं। अगर मैं बात करूँ तो 4-5 जो यहाँ पे सीट्स हैं वहाँ पे ज्यादा गहमागहमी देखने को मिल सकती है, वहां पे ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें खास तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा बठिंडा सीट का, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो अकाली दल की नेता है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनके सामने होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर राजा वड़ेंग और आम आदमी पार्टी के बलजिंदर कौर, काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और साथ ही गुरदासपुर में भी जहाँ पर फिल्मस्टार सनी देओल पहली बार चुनावी मैदान में है और उनके सामने होंगे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ हैं, जो लगभग दो साल पहले बाई इलेक्शन जीते थे यहाँ से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कांग्रेस जो है उन्होंने मिशन 13 क्लेम किया है कि उनका दावा है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है कि हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। साथ ही दावा जीत का अकाली दल और भाजपा भी कर रहे हैं जो एक साथ मैदान में, और उनके उनके आम आदमी पार्टी जो है वो भी दावा कर रही है कि हम भी जीतने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी कड़ा मुकाबला होगा वहां पर जो संगरूर से मैदान में है। इसके अलावा हम बात करें तो मनीष तिवारी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, वो भी चुनावी मैदान में है। वो उनका मुकाबला जो है वो प्रेम सिंह चंदू माजरा से है जो अकाली दल के हैं, और आनंदपुर साहब से वो मैदान में है। सुखबीर बादल इस बार मैदान में है जो जिसकी वजह से फिरोजपुर सीट पर काफी नजरें गड़ी होंगी सुखबीर बादल के खिलाफ होंगे। उनके जो पुराने अपने कैंडिडेट थे, अपने नेता थे उनकी पार्टी के अकाली दल के, अब वो कांग्रेस में शेर सिंह गुभाया। तो इस तरीके से इन खास जगहों पर ज्यादा जो है मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा पटियाला जो है जहाँ पे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी जो है वो मैदान में होंगी, परनीत गिल परनीत कौर उनके सामने होंगे, धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी की जो पहली इससे पहले पिछले चुनाव में जीते थे। तो देखना होगा लेकिन ये अच्छी बात जो कांग्रेस के कांग्रेस और अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट के लिए नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 3-4 दिन में ही जो है चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। जी
ये थे बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा गुरदासपुर से। पंजाब से ही लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार क्या होगा आज ही तय करेंगे हिमाचल प्रदेश के मतदाता भी। हिमाचल प्रदेश से लौटते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल में लोकसभा की 8 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी शुरे नियाजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शुरे, पिछली बार ये सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार कांग्रेस से कितनी चुनौती मिल रही है बीजेपी को इन 8 सीटों पर?
देखिए आज जो है ये मालवा निमाड़ के 8 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा शामिल है। तो मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में सीधा है। भाजपा ने इन 8 में से 6 सीटों पर अपने जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे हैं। और हम सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की, जो सबसे प्रमुख शहर है, वहां पर 8 बार की जो सांसद है सुमित्रा महाजन वो इस बार मैदान में नहीं है। तो इस वजह से बरसों बाद कांग्रेस जो है मुकाबले में नजर आ रही है। कांग्रेस के पंकज संघवी और भाजपा के शंकर लालवानी के बीच मुकाबला है। इसके बाद देवास जो शहर है वहां पर दोनों ही पार्टियों ने गैर राजनीतिक लोगों को उतारा है। भाजपा से जो जज रहे हैं महेंद्र सोलंकी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से कबीर पंथी जो लोक गायक हैं प्रहलाद टिपानिया मैदान में हैं। तो यहां पर भी जो हम देख रहे हैं कि मुकाबला बराबरी का है। खंडवा एक और महत्वपूर्ण सीट है जहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है। कांग्रेस से अरुण यादव हैं और भाजपा से नंद कुमार सिंह चौहान लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अरुण यादव को थोड़ा सा फायदा दिख रहा है। दोनों एक बार 2009 में अरुण यादव यहाँ से सांसद रहे हैं, तो 2014 में नंद कुमार सिंह चौहान सांसद रहे हैं। तो ये तीसरी बार है कि दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। इस जो जो हम मालवा और निमाड़ को देख रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, तो किसान इस क्षेत्र में एक बड़ा फैक्टर है, कर्ज माफी मुद्दा है, क्योंकि आधे आज जो किसान है उनके कर्ज माफ किए जा चुके हैं और आचार संहिता की वजह से आधे किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए।
बहुत शुक्रिया भोपाल से सूर्यनियाजी, हम आपको यहीं रोकेंगे, वक्त की कमी है, लौट रहे हैं दिल्ली स्टूडियो। मेरे ठीक सामने वाली कुर्सी पर इस समय बैठे हैं दिनेश उप्रेती और दिल्ली से छपने वाले तमाम अखबार उनके हाथ में हैं। बताइए आज अखबारों में क्या सुर्खियाँ लगी हैं।
जी संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार संहिता के मामलों में क्लीन चिट दिए जाने का मामला और नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लावासा की आयोग की मीटिंग में शामिल होने से इनकार किए जाने की खबरें लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। खबरों के मुताबिक लावासा ने कहा कि मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो दूसरे उपायों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी को विवादित बयानों के मामले में क्लीन चिट दिए जाने पर उनके फैसले को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। लवासा की चिट्ठी की खबरें मीडिया में आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी किया और इसे गैर जरूरी विवाद बताया। इस मामले पर विचार के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कल लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। 23 मई को चुनाव परिणाम आने से पहले तीसरे मोर्चे की कोशिशों के मद्देनज़र इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें चरण के चुनाव से एक दिन पहले परंपरागत पहाड़ी पोशाक के में केदारनाथ के दर्शन करने और बाद में केदारनाथ के पास एक गुफा में साधना की खबर तस्वीर के साथ लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
शुक्रिया दिनेश उप्रेती। भारत में मतदान पूरी तरह से संपन्न होने के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स पर एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं जिसमें हार जीत के दावे किए जाते हैं। ये सर्वे कई बार नतीजों से मेल खाते हैं तो कभी एकदम विपरीत भी निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यही समझने के लिए बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे ने एग्जिट पोल की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से जानने वाले सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS के निदेशक संजय कुमार से बात की।
देखिए, जो आंकड़े आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उसके पीछे एक बड़ी टीम होती है जो काम करती है। एग्जिट पोल जब किया जाता है तो ये आम धारणा है कि जब वोटर वोट देके बाहर निकलता है उसी समय वोटरों से बात की जाती है, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बट एक सवाल उसमें जरूर होता है कि आपने वोट किसे दिया। हजारों वोटरों का इंटरव्यू करके वो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण करके एक वोट एस्टिमेट्स की किस पार्टी को कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा।
जब आप मतदाताओं का इंटरव्यू करते हैं जैसा कि आपने बताया, आपको क्या लगता है कि हर बार मतदाता जो है वो सही बात ही बताते हैं?
देखिए, आम धारणा है कि क्या मतदाता सही बात बताता है या नहीं बताता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ मतदाता शायद कुछ जैसे कहते हैं ना मस्ती लेने के लिए और कुछ मस्ती के लिए उन्होंने थोड़े झूठ बोल दिए या मजाक कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानता कि मतदाताओं को, आम मतदाताओं को जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें कोई सुख अनुभव होता है झूठ बोलने में। हम इसी धारणा पे काम करते हैं कि मतदाता आखिरकार सच बोलता है। कुछ ऐसे मतदाता हो सकते हैं जो झूठ बोलते हैं और मुझे लगता है ये एक और कारण हो सकता है कि जब आकलन सही नहीं होते हैं तो कुल मिला के, और इसकी एक टेस्ट हो जाती है। आप देखिए, जितने भी एग्जिट पोल के अनुमान आए और बाद में जब नतीजे आए, आप अगर 10, 15, 20 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमान रिजल्ट्स के करीब होते हैं। ये जरूर है कि कई बार एग्जैक्ट वो आंकड़ा नहीं मिलता, लेकिन करीब होते हैं। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि मतदाता झूठ नहीं बोलता। हो सकता है कि वो जो आकलन अनुमान होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस वजह से भी होता है कि कुछ एनालिसिस में कमी रह गई हो।
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल उलट आए, तो ऐसे में जब एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आखिर गलती कहाँ होती है?
5 या 7 एग्जिट पोल हुए, एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग रहे, लेकिन ऐसा कहना कि सारे एग्जिट पोल गलत हुए थे वो नहीं था। हम किस तरह से एग्जिट पोल को मापने का पैमाना एक तरह से तय करते हैं। देखिए, एक एग्जिट पोल ये है कि भाई आपके एकदम आंकड़े सटीक थे, आपने 50 सीटें कहीं एक पार्टी के लिए, आपको एक रेंज दिया 50 से 55 और उसी रेंज में आ गया, हम कहते हैं एकदम सटीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिट पोल का अनुमान डायरेक्शन सही होता है, आपने 50 सीटें कही, हो सकता है पार्टी को 45 सीटें आई, हो सकता है पार्टी को 56 सीटें आई हूँ, 55 सीटें आई हूँ, लेकिन अगर आपने जिस पार्टी के बारे में कहा कि उस पार्टी की सरकार बनेगी और फाइनली रिजल्ट्स भी उसी पार्टी के पक्ष में आते हैं, आंकड़ा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, हमें उसे मानना चाहिए कि कम से कम अनुमान का डायरेक्शन सही था। अगर हम उसे भी गलत मान लें तो शायद मुझे लगता है थोड़ी बेईमानी है। हमें इस बात का अंदाज रखना चाहिए कि एग्जिट पोल एक सैंपल के तौर पे होता है, हमें ये मानना चाहिए कि लाखों वोटर होते हैं और उसमें आप कुछ हजार वोटरों से बात करते हैं और इतनी वेरिएशन की गुंजाइश तो बनी रहती है।
जानकारी दे रहे थे सीएसटीएस के निदेशक संजय कुमार। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनावों में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के कंजर्वेटिव गठबंधन को कुछ इस तरह से जीत मिली है कि वो इसे चमत्कारिक जीत मान रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिनेश उप्रेती।
तालियों की ये गड़गड़ाहट और स्कोमो स्कोमो का नारा देते समर्थकों का शोर ये बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ऐसा कि जिसकी उम्मीद शायद ही कोई कर रहा हो। सारे सियासी अनुमानों और भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं ने कल हुए संघीय चुनावों में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव गठबंधन को फिर से सत्ता सौंपने का फैसला सुनाया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संघीय चुनावों में अपने गठबंधन को फिर से चुनने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ मंच पर आए मॉरिसन ने अपने समर्थकों से कहा कि उन्हें पता था कि चमत्कार हो सकता है, फिर चाहे सियासी पंडित जो भी भविष्यवाणी करें। पहले जो अनुमान लगाए गए थे उनमें विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को बहुमत के करीब दिखाया गया था। मॉरिसन ने कहा,
आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन मिरेकल्स।
मुझे हमेशा से ही चमत्कारों में यकीन रहा है। मैं आज रात अपने जीवन के तीन बड़े चमत्कारों के साथ आपके बीच हूँ और एक और चमत्कार देख रहा हूँ। ये थे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के शब्द। चुनावों का अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन 70% से अधिक मतों की गिनती के साथ गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। गठबंधन को बहुमत के लिए 76 सीटों की जरूरत है और वह 74 सीटों पर आगे है। ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है और कहा है कि वह पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं।
It is obvious that Labor will not be able to form the next government. And so,
इतना तय है कि लेबर पार्टी अगली सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी और इसीलिए राष्ट्रीय हित में मैंने कुछ देर पहले स्कॉट मॉरिसन को फोन कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ये थे लेबर पार्टी के नेता शॉर्टन के शब्द। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनावों के लिए शनिवार को मतदान हुआ। सिडनी स्थित बीबीसी संवाददाता हाइवेल ग्रिफिथ के मुताबिक ऐसे नतीजों की उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। पिछले 2 साल में जितने भी ओपिनियन पोल हुए उनमें गठबंधन लेबर पार्टी से पीछे था और माना जा रहा था कि इस बार सरकार बनाने की बारी लेबर पार्टी की है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। आज रविवार है और हर रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा। आलेख बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद का है, सुनिए मोहम्मद शाहिद की जुबानी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, IMF से बेलआउट पैकेज, बढ़ती महंगाई और ईरान और अमरीका के बीच खराब होते रिश्ते से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया है। सप्ताह के शुरू में पाकिस्तान को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए बेलआउट पैकेज पर पाकिस्तान और IMF में समझौता हो गया। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के सलाहकार अब्दुल शेख ने IMF से समझौते की आधिकारिक घोषणा कर दी। अखबार के अनुसार समझौते के तहत पाकिस्तान करीब 750 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगा। इस समझौते की शर्तें जैसे जैसे सामने आने लगी बाजार और खराब होता चला गया। शुक्रवार को पाकिस्तानी शेयर बाजार इस कदर प्रभावित हुआ कि डॉलर की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई। जंग अखबार के अनुसार पाकिस्तान के इतिहास में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया इतना कमजोर कभी नहीं हुआ था। अखबार नवाए वक्त के अनुसार पाकिस्तान की करेंसी इस समय एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हो गई है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी इसके लिए सीधे तौर पर इमरान खान और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अखबार दुनिया के अनुसार मुस्लिम लीग नवाज ने ईद के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। अन्य खबरों की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कि वो अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। अखबार जंग के अनुसार इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ईरान हमारा पड़ोसी है और इस क्षेत्र का एक अहम मुल्क है। अमरीका और ईरान के बीच किसी भी विवाद में हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। उसी संवाददाता सम्मेलन में कुरैशी से जब बालाकोट हमले और रडार से जुड़े भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, मौसम की खराबी के कारण हमारे रडार काम नहीं कर रहे थे, तब हमने भारत के 2 विमान मार दिए थे।
उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में कुल 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, होने वाला है अब से कुछ देर में शुरू। इस खबर से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरें आप bbchindi.com पर आकर दिन भर पढ़ सकते हैं। भारत में कुछ ही देर में बजने वाले हैं सुबह के 7, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति।